हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आधा दिन और बीत गया था, शाम का वक्त था। इंजेक्शन का असर खत्म होते ही धृति के शरीर का तापमान बढ़ने लगा था। अर्णव बहुत ख्याल रख रहा था उसका, उसे एक कदम तक जमीन पर नहीं रखने दे रहा था, दो बार उसके पैरों में दवाई भी लगा चुका था। धृति को जब भी वॉशरूम जाना था, अर्णव उसे लेकर गया था। वो हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रख रहा था, उसने उस पर एक बार भी गुस्सा नहीं किया था। दोपहर के बाद से बार बार उसने उसके शरीर का तापमान जांचा था, और जैसे ही उसे बुखार चढ़ना शुरू हुआ, अर्णव ने तुरंत उसे हल्का नाश्ता करवाकर दवाई खिला दी। उस वक्त बुखार उतर गया था, उसके शरीर में कमजोरी थी, इसलिए अर्णव ने उसे बिस्तर पर लेटे रहने का आदेश दिया था, पर धृति सुबह से बेड पर बैठे और लेटे उकता गई थी। इस वक्त अर्णव बेड के दूसरे कोने पर बैठा अपने फोन में कुछ कर रहा था, तभी धृति की आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। क्या ये भी आपका कोई स्पेशल तरीका है मुझे टॉर्चर करने का? अर्णव ने उसकी बात सुनी तो चौंकते हुए उसे देखा। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो वो पूछ रहा हो कि अब उसने ऐसा क्या किया कि वो उससे ये सवाल पूछ रही है। धृति उठकर बैठ गई और उसकी आंखों में झलकते सवाल को समझते हुए मुंह फुलाते हुए बोली, आपने सुबह से मुझे इस बेड पर कैद किया हुआ है, न मुझे कहीं जाने दे रहे हैं, न कुछ करने दे रहे हैं। मैं बैठ बैठ कर और लेटे लेटे थक गई हूँ। अभी तुम चल नहीं सकती हो, ऐसे में कहाँ जाना है तुम्हें? अर्णव ने भौहें चढ़ाकर उसे देखा। बाहर? धृति ने झट से जवाब दिया और निचले होंठ को बाहर निकाले क्यूट सी शक्ल बनाकर उसको देखने लगी। अर्णव कुछ पल उसको घूरता रहा, फिर उसने फोन साइड में रखा और घूमकर धृति की तरफ आ गया। धृति की निगाहें उसी पर टिकी थीं। जैसे ही अर्णव धृति को अपनी बाहों में उठाने लगा, धृति तुरंत ही पीछे हटते हुए बेड के क्राउन से चिपक गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखें बड़ा बड़ा करके उसको देखने लगी। क्या कर रहे हैं आप? मुझे क्या आपने जीती जागती गुड़िया समझा हुआ है? कल से जब मन आता है आप मुझे अपनी बाहों में उठा लेते हैं। मुझे भी भगवान ने दो पैर दिए हैं, माना अभी पैर थोड़े घायल हैं, पर अभी तक टूटे नहीं हैं जो मुझे किसी और पर लाद कर यहाँ से वहाँ जाना पड़े। इतना चल सकती हूँ मैं तो। चलो, अर्णव ने पीछे हटते हुए कहा और पलट कर पूल साइड चला गया। वो इतनी आसानी से उसकी बात मान गया था, धृति को तो इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो अचरज से आंखों की पुतलियां फैलाए उसे देखती रही, फिर उसने सर झटका और कदम जमीन पर रखे तो दर्द की एक लहर उसे छूकर गुजर गई। असल में धृति के पैर बहुत नाजुक थे, हील्स के कारण उसके पैर में साइड और तलवे में छाले हो गए थे और वो छिलकर घाव जैसे बन गए थे, इसलिए उसे चलने में तकलीफ हो रही थी। सहारा लेते हुए धृति किसी तरह पूल साइड पहुंची तो गेट के पास ही अर्णव खड़ा था। धृति ने उसे देखा, फिर चेहरा फेर कर दूसरे तरफ से जाने लगी, पर अर्णव ने आगे बढ़कर उसकी बांह थाम ली और सहारा देते हुए उसे पूल साइड लगे लाउंजर पर बिठा दिया और खुद उसके बगल में आकर बैठ गया। दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी। अर्णव धृति को देख रहा था और धृति आंखें मूंद कर बैठी थी। मौसम सुहावना था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं, आकाश में चहचहाते पंछी मधुर संगीत सुना रहे थे। दिल को सुकून पहुंचाने वाला शांति भरा वातावरण था और धृति आंखें बंद किए बस इस सुकून को महसूस कर रही थी। कुछ देर वे वहीं बैठे रहे, उनके बीच गहरी शांति पसरी रही। उनका रिश्ता ऐसा था भी तो नहीं कि साथ बैठकर चंद बातें कर सकें। कुछ देर बाद जब वहां अंधेरा छाने लगा और मौसम ठंडा होने लगा तो अर्णव धृति को लेकर अंदर चला आया। धृति की फरमाइश के हिसाब से रात का डिनर बना था। धृति की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए खाना कमरे में ही आया था, पर जैसे ही धृति ने पहला निवाला मुँह में डाला उसका मुँह बिगड़ गया। यक, मुझे नहीं खाना, ये बहुत खराब लग रहा है ये। धृति की बात सुनकर अर्णव ने चौंकते हुए उसे देखा और हैरानगी से बोला, तुम्हारी पसंद का खाना है, फिर क्या परेशानी है तुम्हें? अब खाने में नखरे क्यों कर रही हो? धृति ने सर घुमाकर उसे देखा और मुंह बिचकाते हुए बोली, मेरे मुंह का स्वाद खराब हो गया है, मुझे सब कुछ कड़वा लग रहा है। तो बुखार में ऐसा होता है, दो तीन दिन में ठीक हो जाएगा, तब तक देमन ही सही, पर खाना तो खाना ही होगा। चलो जल्दी से खाना खाओ, फिर दवाई भी लेनी है। अर्णव ने आंखें दिखाते हुए उसको खाने को कहा। धृति ने मुंह बिगाड़ा और बेमन से खाना खाने लगी। खाने के बाद अर्णव ने उसे दवाई खिलाकर लिटा दिया और खुद उसके पैरों में दवाई लगाने के बाद उसे अच्छे से ब्लैंकेट से ढक दिया। धृति बस एक तक उसे देखती रही, फिर उसने अपनी आंखों को मूंद लिया। आधी रात बीत गई थी। अर्णव सो रहा था, तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। पहले तो उसने नींद में इग्नोर किया, पर जब आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी तो अर्णव अपनी आँखों को मलते हुए उठकर बैठ गया। उसने आवाज़ की दिशा में अपनी उनींदी आँखें घुमाईं तो नज़र धृति पर पड़ी, जो नींद में कुछ बड़बड़ाते हुए सिसक रही थी। उसकी आँखों के कोर से चुपके से आँसू की बूंद फिसलते हुए उसकी कनपट्टी को भिगो रहे थे। ठंड से बुरी तरह काँप रही थी वो। धृति को इस हालत में देखकर अर्णव की सारी नींद एक झटके में गायब हो गई। वो तुरंत ही धृति के पास आया और जैसे ही उसने धृति के गाल को छुआ, उसे महसूस हुआ कि उसका बदन एक बार फिर भट्टी सा तप रहा था। अर्णव ये देखकर घबरा गया। उसने तुरंत उसके माथे और गर्दन पर छूकर देखा तो वो सच में बुखार से तप रही थी। अर्णव ने तुरंत थर्मामीटर निकालकर धृति के गालों को दबाते हुए उसके मुंह को खोला और थर्मामीटर से उसका तापमान चेक किया। फिर से उसको 104 बुखार था। ये देखकर अर्णव घबरा गया। उसने जल्दी से धृति की दवाई निकाली, उसे सहारे से किसी तरह बिठाते हुए उसको थोड़ा मुश्किल से ही सही पर दवाई खिलाई, फिर उसे वापस लिटाया और एक और ब्लैंकेट निकालकर उसे अच्छे से ढाँक दिया। पर धृति अब भी ठंड से कांप रही थी। अर्णव बाथरूम से ठंडा पानी लेकर आया और उसके पास बैठकर उसके सर पर गीली पट्टी करने लगा। धृति अब भी कुछ बड़बड़ा रही थी, पर आवाज़ क्लियर बाहर नहीं आ रही थी। आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे और चेहरे पर दर्द, पीड़ा, बेबसी, दुख व तड़प जैसे अनेकों भाव पसरे बैठे थे, जैसे नींद में कोई बुरा सपना देख रही हो। अर्णव ने कुछ देर बाद उसके सर और गर्दन को छूकर देखा तो अब तापमान कुछ कम हो गया था। अर्णव ने उसके फड़फड़ाते लब देखे तो कुछ सोचते हुए झुककर अपने कान को उसके होंठों के पास ले गया। आवाज़ बेहद धीमी थी और रुंधी हुई थी, इसलिए उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, पर एक शब्द जो साफ सुनाई दिया था वो था पापा। अर्णव ने निगाहें तिरछी करते हुए धृति के चेहरे को देखा। शायद वो अपने पापा से जुड़ा कोई सपना देख रही थी। अनायास ही अर्णव के कानों में वो शब्द गूंज उठे जब धृति ने दर्द से लिपते शब्दों में अपने पापा के जाने का जिक्र किया था। कहा था कि अकेली तो वो उनके जाने के बाद ही हो गई थी। जाने उन बंद पलकों के पीछे छिपी आंखों में कितना दर्द बसा था, जाने उन खामोश लबों के पीछे कितने ही राज दफन थे। अर्णव कुछ पल टकटकी बांधे धृति को देखते हुए कुछ सोचता रहा, फिर सीधा होकर बैठ गया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसको सांत्वना देने लगा। जानिए उसके स्पर्श में ऐसा कौन सा एहसास बसा था जिसे महसूस करते हुए धृति धीरे धीरे शांत होती चली गई और नींद में ही थोड़ा खिसकते हुए अर्णव की गोद में अपना सर रखते हुए अपनी बाहों को अर्णव के पेट के इर्द गिर्द लपेट दिया, मानो उसे खुद से दूर जाने से रोक रही हो। अब भी उसका बदन गर्म था, पर अर्णव अब चाहकर भी न उसे खुद से अलग कर पा रहा था और न ही उसके सर पर ठंडी पट्टी कर पा रहा था। वो बस प्यार से धृति के सर को सहलाता रहा। धृति के आंसू और बड़बड़ाना थम गया था। दवाई के असर से धीरे धीरे उसका बुखार भी उतर गया और बदन ठंडा होने पर वो गहरी नींद में सो गई। अर्णव ने उसके गर्दन पर हाथ लगाकर उसका बुखार चेक किया, फिर उसका ठंडा बदन देखकर उसने चैन की सांस ली। धृति को खुद से दूर करने का ख्याल एक पल को उसके मन में आया, पर उसकी कसी हुई पकड़ और कुछ देर पहले की उसकी हालत याद करते हुए उसने वो विचार त्याग दिया। वो इतने सुकून से सो रही थी कि अर्णव ने उसे ऐसे ही सोने दिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए अपना सर क्राउन से टिकाते हुए अपनी आंखों को मूंद लिया। उसके होंठ हल्के से फड़फड़ाए और लबों से कुछ शब्द निकले। इतनी सेंसिटिव हो तुम वो सब कैसे कर सकती हो? एक और सवाल उठा उसके मन में, जिसका कोई जवाब नहीं था अभी उसके पास। कुछ ही देर में वो बैठे बैठे ही सो गया। अगली सुबह धृति की आंखें खुली और आंखों के सामने अर्णव के पैर आ गए, जिन्हें तकिया बनाए वो सुकून की नींद में गुम थी। ये देखकर धृति चौंक गई, साथ ही उसे एहसास हुआ कि उसकी बाहें किसी के बदन पर लिपटी हैं। अपने सर पर किसी का हाथ के ठहरने का भी आभास हुआ। उसने हौले से सर घुमाकर देखा तो नज़र अर्णव पर पड़ी, जो बैठे बैठे ही सो रहा था। पहले तो धृति ये देखकर ब्लैंक सी आंखों की पुतलियों को फैलाए उसे देखती रही। उसे समझ ही नहीं आया कि ये कब, कैसे और क्यों हुआ। वो अर्णव की गोद में सर रखकर इतने सुकून से कैसे सो रही थी? अर्णव यहाँ क्या कर रहा है और उसे उसने ऐसे पकड़ा हुआ क्यों है? और उसे धुतकार कर खुद से दूर करने के बजाय अर्णव उसके सर पर हाथ रख के उसके पास बैठे क्यों सो रहा है? इन्हीं सब सवालों में उलझी धृति ने अपने दिमाग पर जोर दिया तो बीती रात की धुंधली धुंधली सी यादें उसके मन में ताज़ा होने लगीं। बुखार में तड़प रही थी वो। ठीक से कुछ याद तो नहीं था, पर नींद में अर्णव के कहे शब्द जो उसने सुने थे अब याद आ रहे थे। अधखुली आंखों से कुछ चीजें देखी थी उसने, जो अब धुंधली धुंधली सी याद थीं। धृति को आधी अधूरी और टुकड़ों में बिखरी चंद बातें ही याद थीं, और उन्हीं से वो बहुत हैरान थी। धृति ने थोड़ा ऊपर उठते हुए देखा तो साइड टेबल पर पानी का बाउल रखा हुआ था और उसमें सफ़ेद सूती रुमाल रखा हुआ था। धृति ने एक बार फिर सर घुमाकर अर्णव को देखा और उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी छा गई। धृति अर्णव को देख ही रही थी जब अर्णव की पलकें हल्की सी हिली और धृति ने घबराकर तुरंत ही अपना चेहरा वापस उसकी गोद में छुपा लिया। कुछ सेकंड बाद अर्णव ने अपनी आंखें खोली और नज़र सीधे धृति पर पड़ी, जो अब भी उसकी गोद में सर रखकर सो रही थी। अर्णव ने अपनी हथेली उसकी गर्दन पर लगाकर देखा तो अब बुखार नहीं था। उसने वापस अपने हाथ पीछे कर लिया, जबकि उसके अचानक किए स्पर्श से धृति जम सी गई। सीने में मौजूद दिल धक धक करने लगा। वही अर्णव इन सबसे पूरी तरह अनजान था। उसे तो लगा कि धृति अब भी सो रही है, तो उसने बड़े ही एहतियात से उसे बेड पर लिटा दिया। उसे ब्लैंकेट से ठीक से कवर किया, उसके सर पर हाथ फेरा, उसके सर को चूमने के लिए वो हल्का झुका, फिर कुछ सोचते हुए बीच में ही रुक गया और आराम से बेड से उतरकर बाथरूम में चला गया। उसके जाते ही धृति ने अपनी आंखें खोल दी, सर घुमाकर बाथरूम के बंद दरवाजे को देखा। उसकी आंखें नम थीं, जहन में कई सवाल घूम रहे थे, पर लब खामोश थे। कुछ देर बाद अर्णव बाथरूम से बाहर निकला तो उसकी नज़र धृति पर पड़ी, जो बेड पर बैठी अपनी ही सोच में गुम थी। अच्छा हुआ तुम उठ गई, चलो मैं तुम्हें बाथरूम में छोड़ देता हूँ, नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, फिर खाने के बाद दवाई भी लेनी है, कल रात फिर तुम्हें बुखार हो गया था। धृति के कानों में अर्णव के शब्द पड़े, तब कहीं जाकर वो अपने सोच से बाहर आई। उसने सर घुमाया, तब तक में अर्णव उसके पास आ चुका था। अर्णव ने उसे अपनी बाहों में उठाया और पहले चेंजिंग रूम में लेकर गया, जहाँ से धृति ने अपने कपड़े लिए, फिर उसने उसे बाथरूम में छोड़ आया, खुद अपने कपड़े लेकर दूसरे कमरे में चला गया।